पृष्ठ संख्या 116, दो तुलसीदास, सन 1532 से 1623 ईस्वी। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी कविता का वह नाम है जिसके विराट व्यक्तित्व के समक्ष भारत भर के सभी भाषाओं के समग्र कवि बौने नजर आते हैं। उनकी कविता में वह सब कुछ है जो लोक शास्त्र और जीवन में फैला हुआ है। अकबर की जीवनी लिखने वाले विंसेंट स्मिथ और इतिहासकारों ने उन्हें अकबर से भी बड़ा विजेता कहा है, जिसने अपनी प्रतिभा से करोड़ों हिंदुओं के हृदय पर सदा के लिए अधिकार कर लिया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने बुद्धदेव के बाद उन्हें भारत का सबसे बड़ा मानवतावादी महापुरुष कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भारतवर्ष का सबसे बड़ा लोकनायक करार दिया है। समन्वय की विराट चेष्टा लेकर उत्पन्न हुए थे। आचार्य शुक्ल ने भी उन्हें निर्विवाद रूप से हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस का आज दुनिया भर में अध्ययन हो रहा है। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और जीवन संबंधों का वह भव्यतम रूप मिलता है जिसका कहीं अन्य मिलना आकाश कुसुम की भांति है। आध्यात्म, धर्म, दर्शन, नीति, लोक मर्यादा, भक्ति और समस्त प्रकार के काव्य रूप और काव्य रीतियों का जैसा पांडित्यपूर्ण सामंजस्य उनकी रचनाओं में है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। लोकनायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को आधार बनाकर राम भक्ति की जो मंदाकिनी उन्होंने बहाई, उसकी कल-कल ध्वनि आज भी सुनी जा सकती है। ऐसे महिमावान व्यक्तित्व वाले तुलसीदास के जन्म, मृत्यु तथा जीवन की अन्यान्य घटनाओं का कोई बहुत पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। अंतः और बहिर्साक्षियों, जनश्रुतियों आदि के आधार पर कुछ विद्वान उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव तो कुछ एटा जिले के सोरों नामक स्थान को मानते हैं, पर अधिक मान्यता राजापुर की ही है। जनश्रुति के अनुसार तुलसी की माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे और बचपन का नाम राम बोला था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। तुलसी ने एकाधिक स्थलों पर जैसे बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि इसी नाम की वंदना की है। मातु पिता जग जाई तज्यो विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई जैसी कवितावली की युक्तियों से पता चलता है कि तुलसी का बचपन अत्यंत कष्ट में बीता। बचपन से ही माता पिता के स्वर्गीय हो जाने के कारण उनका जीवन अत्यंत ही उपेक्षित रहा, जिस परिणीता पत्नी रत्नावली पर हुए। पृष्ठ संख्या 117। अत्यंत आसक्त थे, कहते हैं कि वही उनके वैराग्य का कारण बनी। काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों का भ्रमण करते हुए तुलसी ने अस्सी गंग के तट पर राम भक्ति करते हुए काशी में अपना देहपात किया। काव्य कृतियाँ विद्वानों और तुलसी काव्य के अध्येताओं ने उनकी कुल 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। ये हैं रामलला नाछू, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली ब्रैकेट में या कवित्र रामायण, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। इनमें तुलसी की अक्षय कीर्ति का आधार उनका विश्व विस्तृत ग्रंथ रामचरितमानस है। संसार की लगभग सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसके कुल 7 कांडों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र वर्णित है। तुलसी ने वस्तुतः राम कथा के बहाने इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति के उन समग्र मूल्यों की आदर्श और उच्चतम प्रतिष्ठा की है जिनके कारण वह संसार में वंदनीय है। इसमें हुए शील निरूपण, मार्मिक प्रसंगों के सविस्तार वर्णन तथा कथा संबंध के सफल निर्वाह के कारण प्रबंध काव्यों के प्रशंसक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए तुलसी को हिंदी का सबसे बड़ा कवि करार दिया है। तुलसी के इस महाकाव्य की भाषा अवधि है। रामचरितमानस के अतिरिक्त कवितावली और विनय पत्रिका भी तुलसीदास की अन्यतम कृतियां हैं। कवितावली में कवित, सवैये छंद में राम की ही संक्षिप्त कथा है। इसमें भी मानस की भांति सात खंड हैं। इसकी भाषा ब्रज है। इसके उत्तरकांड में आया कलिकाल का वर्णन तुलसी को एक कालद्रष्टा कवि सिद्ध करता है। इसी प्रकार विनय पत्रिका भी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें कुल 779 भक्ति और विनय के पद हैं। भाव, चिंतन, पांडित्य, काव्यकला, भक्ति तत्व आदि सभी दृष्टियों से यह तुलसी की एक बेजोड़ रचना है। इसकी भी भाषा ब्रज है। तुलसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण है। उन्होंने अपनी कृतियों में भारतीय संस्कृत की मूल आत्मा को संरक्षित करने का सच्चा उद्योग किया है। उनकी कृतियों में विविध दार्शनिक सिद्धांतों, मतवादों, साधना पंथों, उपासना पद्धतियों, जीवन संबंधों तथा काव्य रूपों एवं काव्य शैलियों का अभूतपूर्व समन्वय मिलता है। तुलसी ने अपने युग के यथार्थ और समसामायिक जनजीवन का जिस निकटता से अनुभव किया था, उनकी कृतियों में वह सहज ही मूर्तमान हो उठा है। जब तक पृष्ठ संख्या 118 हिंदी भाषा भाषी लोग रहेंगे, तब तक लोकनायक तुलसीदास का यश सदा अक्षुण रहेगा। इसमें किंचित भी संशय नहीं है। तुलसीदास, रामचरितमानस और कवितावली। गोस्वामी तुलसीदास जिस कृति से विश्व कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित हैं, वह रामचरितमानस है। स्वदेशी, विदेशी सभी विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। यह तुलसी का ही नहीं, समूची हिंदी कविता का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। भाषा, भाव, संवाद, चरित्र वैशिष्ट्य, कथा प्रवाह, मार्मिक स्थलों की पहचान तथा चित्रों की स्थानीय विशेषता, लोकशास्त्र सभी दृष्टियों से तुलसी का प्रबंध कौशल बेजोड़ है। रामचरितमानस भारतीय जीवन आदर्श, मूल्य और संस्कृति का कोश है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र द्वारा भारतीय जीवन और सांस्कृतिक मूल्यों के सबसे उदात्त रूप की प्रतिष्ठा की गई है। इस कृति को पढ़ने के बाद इस बात का निर्णय करना कठिन हो जाता है कि तुलसी का भक्त रूप बड़ा है या कवि रूप। वस्तुतः इस महान ग्रंथ में उनके इन दोनों ही रूपों की चरम प्रतिष्ठा हुई है। रामचरितमानस की कथा कुल 7 कांडों में विभक्त है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। लोक और शास्त्र में राम कथा के संदर्भ में जो भी मिलता है, तुलसी ने उसे बड़े ही संश्लिष्ट प्रकार से मोतियों की भांति इन कांडों में पिरोया है। धर्म, दर्शन, राजनीति, समाज, लोकाचार, नीति मर्यादा, भक्ति भावना आदि विषयों को मानवीय संबंधों के सरोकार से बड़ी कुशलता से चित्रित किया गया है। यह रामकथा जगमंगल करने वाली है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन के चारों पुरुषार्थों की प्रतिष्ठा करने वाली तथा दान, दया, परोपकार, शील, करुणा, शक्ति, उदारता, तप, त्याग, विनय, सत्संगति, सुमति इत्यादि श्रेष्ठ गुणों की स्थापना करने वाली पवित्र, निर्मल भागीरथी के समान पुण्यकारी और परोपकारी है। इस कथा के सातों कांडों में हमारे जीवन के सभी क्रियाकलाप समाहित हैं। संसार में जीवन और मानवीय संबंधों का जो भी उत्तमोत्तम आदर्श है, वह सब इसके भीतर सन्निहित है। इस महाकाव्य में नर संस्कृति के अतिरिक्त वानर संस्कृति, ऋक्ष संस्कृति, देव संस्कृति तथा दानव संस्कृतियों का एक साथ चित्रण है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने कहा है कि रामचरितमानस ऐसी अकेली कृति है जो मध्यकालीन हिंदी साहित्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में समर्थ है। हिंदी के सबसे बड़े आलोचक तथा प्रबंध काव्यों के प्रशंसक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य प्रतिमानों पर यदि कोई पृष्ठ संख्या 119 कवि पूरी तरह से खरा उतरता है, तो वह है तुलसीदास। उन्होंने स्वयं ही तुलसी की इस कृति द्वारा अपनी काव्य कसौटी के कई प्रतिमान गढ़े हैं। बाल कांड रामचरितमानस का प्रथम कांड होने के कारण यह परम पावनी कलि पापन सावनी रामकथा का प्रस्थान बिंदु है। मंगलाचरण के रूप में गणेश और सरस्वती की वंदना वंदे वाणी विनायको से प्रारंभ कर कवि तुलसी ने इसमें गुरु ब्राह्मण खल संत असंत शिव पार्वती राम सीता आदि की वंदना करते हुए याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद द्वारा कथा को कहलवाया है। इस कांड के मुख्य प्रसंगों में शिव द्वारा सती का त्याग, दक्ष यज्ञ विध्वंस, पार्वती का जन्म, कामदेव का भस्म होना, शिव पार्वती विवाह, नारद माया प्रसंग, विश्वमोहिनी स्वयंवर, मनुष्यत्व रूपा तप, दशरथ का पुत्र प्राप्ति यज्ञ, चारों बालकों का जन्म, यज्ञ रक्षा हेतु विश्वामित्र का राम लक्ष्मण को ले जाना, अहल्या उद्धार, जनकपुरी में सीता स्वयंवर, धनुष भंग परशुराम, लक्ष्मण संवाद, श्री राम सीता विवाह तथा बारात अयोध्या लौटना प्रमुख हैं। इस कांड में वात्सल्य, भयानक, वीर, करुण और रौद्र रसों के कई सुंदर प्रसंग हैं। संवाद कला का परिपाक शिव पार्वती संवाद तथा परशुराम लक्ष्मण संवाद जैसे प्रसंगों में सहज ही दिखाई पड़ता है। कवि तुलसीदास की इस रामकथा का मूल आधार संस्कृत भाषा में ऋषि वाल्मीकि विरचित रामायण है, जो संस्कृत का महाकाव्य है। बालकांड के पश्चात रामचरितमानस में अयोध्या कांड की कथा आती है, जिसमें राम के राज्याभिषेक की तैयारी से लेकर भरत के अयोध्या लौटने तक की घटना का वर्णन है। यह रामचरितमानस का बड़ा ही महत्वपूर्ण कांड है, जहाँ नवीन घटनाओं के घटने से कथा प्रसंग में एक नया मोड़ आता है। इसके मार्मिक प्रसंगों में राम वनगमन, दशरथ मरण, पूर्ववासियों का शोक, भरत का ननिहाल से लौटना, केवट प्रसंग, भरत का चित्रकूट गमन, चित्रकूट सभा तथा भरत का पादुका लेकर पुनः अयोध्या लौटना, यही वह कांड है जहाँ एक भाई राज त्याग कर वन का दुख सहने चला जाता है और दूसरा मिले हुए राज्य को ठुकरा कर उसी रास्ते उसे मनाने जाता है। भायप भगति का ऐसा उदाहरण दुनिया के साहित्य में विरल है। पृथ्वी के परित्राण के लिए राज्य के वैभव को छोड़कर वन की दुर्गम यात्रा पर निकलना, साधु पुरुषों के कल्याण और असुरों के दमन के लिए स्वयं वन वन भगवान का भटकना और कष्ट सहना हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। इसमें चित्रकूट सभा का भी अपना आध्यात्मिक महत्व है। रामचरितमानस की भाषा संस्कृत निष्ठ परिष्कृत अवधी है। तुलसी ने अपनी प्रतिभा और काव्य कला से इसे अद्वितीय बना दिया है। पृष्ठ संख्या 120। रामचरितमानस महाकाव्य है तो कवितावली एक मुक्तक काव्य है, जिसमें कथा के पूर्वापर क्रम का निर्वाह नहीं हुआ है। मानस की भांति इसमें भी सात कांड हैं। कवितावली जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह कवित्तों की अवली है। इसमें सवैया छप्पय और कवित्त ब्रैकेट में घनाक्षरी छंद में रामकथा को अति संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। जब तुलसी का मन मानस में रामकथा कहकर भी ना अघाया होगा तो उन्होंने कवितावली की रचना की होगी। इसके कांडों का क्रम भी वही है जो मानस का है, जहाँ अरण्य और किष्किंधा कांड की कथा को मात्र एक एक छंद में समाप्त कर दिया है। वहीं अयोध्या कांड और उत्तर कांड में कथा को कुछ विस्तृत किया गया है। कवितावली का उत्तर कांड सबसे बड़ा कांड है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसमें तुलसी की त्रिकाल दृष्टि का पता लगता है। उत्तर कांड में आज के जीवन की भयावहता और विद्रूपता का चित्रण है। कराल कलयुग में मनुष्य के पतितगामी आचरण को काल में झांक कर तुलसी बाबा ने पहले ही देख लिया था। कवितावली के उत्तरकांड का सत्य आज के समय का सत्य है और इसीलिए उत्तरकांड की प्रासंगिकता आज भी है। कवितावली के उत्तरकांड के 183 छंदों में तुलसी ने राम की कृपालुता, विनय और याचना, नाम महिमा, कलिवर्णन, राम के प्रति प्रेम और भक्ति भावना, प्रभु की महिमा, चित्रकूट वर्णन, तीर्थराज सुषुम्ना वर्णन, गंगा अन्नपूर्ण और शंकर स्तवन के साथ काशी में महामारी जैसे विविध प्रसंगों को बड़ी ही भावुकता एवं कुशलता से चित्रित किया है। इन प्रसंगों में सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण कराल कलिवर्णन प्रसंग है, जिसमें तुलसी ने अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सामयिक परिस्थितियों की विद्रूपताओं का बड़ा ही यथार्थ अंकन किया है। इसके साथ ही भुखमरी, बेकारी, लाचारी, बेरोजगारी, छल, प्रपंच, पापाचार, मिथ्याचार, दंभ, आडंबर, इंद्रिय लोलुपता, कलुषित कृत्य, दान दया, यज्ञ, धर्म का लोप, दरिद्रता और पेट की आग के आगे बेटा बेटी तक को बेच देने जैसे मानवीय संबंधों की संवेदनहीनता और विवशता का अत्यंत ही ज्वलंत चित्रण किया है। यह तुलसी के समय में जितना सत्य था, आज उससे कम न होकर कहीं अधिक है। जो दृश्य देखिए, एक ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बड़ वाग्नि ते बड़ी है आगी पेट की। पृष्ठ संख्या 121। दो, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बले, बनिक को बनिजन न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। पेट की आग ब्रैकेट में समुद्र की आग से भी भयंकर होना, उसे बुझाने के लिए बेटा बेटी तक को बेच देना, किसानों का खेती व्यापारियों का व्यापार तथा भिखारियों का भिक्षा विहीन होना, रोजगार की तलाश में लोगों का इधर उधर भटकना, दुखी होना, क्या यह आज के समय का सच नहीं है? जिसे महाकवि तुलसी ने अपने ज्ञान चक्षुओं से देखकर आज के 500 साल पहले ही लिख दिया था। इसीलिए कवितावली का उत्तरकांड आज भी अपना प्रासंगिक महत्व रखता है। कवितावली की भाषा शुद्ध परिनिष्ठित ब्रज है, जिसके माध्यम से तुलसी ने अपना काव्य कौशल प्रकट किया है।